जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितं च नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ना लैपटॉप के ऊपर हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज खुद तो भक्त बने और अब अपने मित्रों को भी, दूसरे असुर बालक हैं उनको भी भक्त बना दिया। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि माँ के गर्भ में क्या सीखा, तो आत्म तत्व का ज्ञान कल हमने सुना प्रहलाद महाराज के मुख से। और फिर प्रहलाद महाराज ने सबको कहा, अपने मित्रों को, कि आप लोग भी जो है इस भक्ति को उठाई भक्ति कीजिए। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं कि सुख की कामना के लिए हर कोई काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, दुख को भगाना चाहता है, दुख से दुख मोक्षाय, दुख से मोक्ष चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है, दुख से मोक्ष मिल नहीं रहा है, सुख मिल नहीं रहा है। तो यही संसार है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, अज्ञान स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह से बने रह सकते हैं। सदा सदा इसी तरह से बने रह सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आप सब लोग भक्ति कीजिए। तो ये सब उपदेश हमारे लिए भी है कि हम भक्ति करें, भक्ति को स्वीकार करें, क्योंकि भक्ति को स्वीकार करेंगे तो कैसे रहेंगे, उत्साहित बने रहेंगे, दुख नहीं रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। तो सब भक्त बन गए। अब प्रहलाद महाराज ने सोचा, चलो सब भक्त बन गए तो फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और सब वहाँ स्कूल में, क्लास में तो थे ही, तो सब हरिनाम कीर्तन करने लग गए। तो इस समय क्या था, षंड मर्क कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ के अपने काम में गए थे। दो ही तो टीचर थे ना, कैसा स्कूल था पता नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी मिनिमम होता है इतना तो टीचर होनी चाहिए, इसमें दो ही टीचर का वर्णन है। एनीवेज बच्चे भी स्पेशल बच्चे थे। तो शंड अमर गए अपने, थोड़ा सा उनका जो काम था उसके लिए बाहर गए। अब शंड और अमर गाते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले तो एक ही भूत था, उनके लिए तो ये हो गया ना, दुष्ट था, एक दुष्ट था, अभी सब दुष्ट हो गए। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपका वो एप्पल का बॉक्स आता है ना, सेब का पूरा बॉक्स आता है, 100 सेब रहते हैं उसमें, अगर एक खराब हो तो फटक से पूरा फैला देगा वो। तो इनके हिसाब से तो ये शंडमरक ने कहा भी था ना कि तुम तो दैत्य कुल को नाश करने वाले हो, बिल्कुल सत्य बोला था, दैत्य कुल को नाश करेगा प्रहलाद। अभी आएंगे प्रहलाद के बापू जी आएंगे और सब खत्म कर देंगे। दैत्यों का राजा खत्म, प्रजा तो ऐसी खत्म हो जाएगी, और फिर प्रहलाद महाराज सबको भक्त बनाएंगे। तो ये सब भक्ति करने लग गए, नाचने गाने लग गए, कीर्तन हो गया, हरे कृष्णा का कीर्तन चालू हो गया। तो इसीलिए काफी जगह पे हरे कृष्णा वालों को लोग घुसने नहीं देते हैं, बोले लो आते हैं चुपचाप से, पर सबको भक्त बना के पूरा मेजोरिटी ले लेते हैं। एनीवेज ये तो भौतिक संसार है। तो सतयुग हो कलयुग हो, प्रहलाद महाराज को भी कष्ट हुआ था प्रचार करने से, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार करने से हमारी अपनी चेतना बनी रहती है, नहीं तो प्रहलाद महाराज अकेले बैठे क्या होते। तो जब शंडमर्क ने देखा कि अब तो सारे बच्चे, असुर बालकों के सारे बच्चे जो हैं सब भक्त बन गए और नाच गा रहे हैं कीर्तन में, तो ये तो बोले हमसे नहीं संभलेगा, और ये दौड़ते हुए गए कहाँ पे, अपने मालिक के पास गए। थोड़ा कम कर लो। श्री नारद वाच अथ दैत्या सुतः सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम जगृहुर निरवद्यतवान नैव गुरु अनुशिक्षितम। कहते हैं कि सब अब सब भक्त बन गए, और जब इन्होंने देखा शंडमर्क ने, तो सीधा भागे हिरण्यकश्यप के पास। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतस्त्वरितो रज्न अवेदयाद्यथा। क्योंकि पहले थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो शंडमर को बुला के डांट दिया था हिरण्यकश्यप ने, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और गड़बड़ हुआ, तो फिर इन दोनों को डांट पड़ी थी। अब तीसरे बार जब ये पता पड़ेगा हिरण्यकश्यप को, तो वो तो मार ही डालेगा, वो मार डालता अभी तक तो है। तो फिर ये लोग सोचे कि इसके पहले कि कोई आके खबर दे, क्या होता है ना जब गलती हो जाए या गड़बड़ हो जाए, इनका गलती नहीं था, इनका क्या गलती था इनका तो कोई गलती नहीं था ना, लेकिन जब कुछ गलत हो जाए ना, तो इमीडिएटली जाके अपना अथॉरिटी को बता देना चाहिए। खुद बताने से क्या होता है ना, आपके ऊपर वो गाज नहीं गिरेगा, चांसेस कम है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी से पता पड़ता हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप बोलता ना, हा? अरे तुम्हारा स्कूल में है, तुम्हारी देख रेख में स्कूल चल रहा है, हम क्या कर रहे हो तुम। इन्होंने खुद ही आके बता दिया तो फिर क्या करते। तो हिरण्यकश्यप ने जब देखा तो एक सांप की पूंछ पे जैसे कोई पैर रख दे, कैसे फनफनाता है सांप। तो सांप की पूंछ पे पैर रखने से तुरंत पहले तो इतना स्विफ्ट होता है सांप, आपकी पकड़ में भी नहीं आता, इतना आसानी से किसी की पकड़ में ना, और तुरंत अपना फन उठा लेता है आपके पे वार करने के लिए। और उसकी जीवा देखा है सांप की जीवा, हाँ? वो ऐसा एक ऐसा आगे से दो धारी हो जाती है, और अंदर बाहर अंदर बाहर फड़फड़ाती है। तो ऐसे हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, जैसे क्योंकि जिस चीज का डर था वो हो गया, ये बच्चा पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा हमारा, मैंने इतना मेहनत से। सही बात है, हिरण्यकश्यप ने कितना मेहनत किया, देवताओं के 100 वर्ष के लिए तपस्या करना आसान नहीं है, और ऐसी तपस्या की और उसके बाद बेचारे को कुछ मिला और वो आके कोई नष्ट कर दे, वो तो अच्छा बात नहीं। तो क्रोधित था बहुत, बुलाया प्रहलाद को। अब क्या बोलता है प्रहलाद को, श्री हिरण्यकश्यपुर्वाच देखो श्री हिरण्यकश्यप वाचा बोलते हैं, हे हे दुर्विनिता मन मंदात्मन, हे दुर्विनिता, दुर्विनिता मतलब तुम कितने दुष्ट हो, मंदात्मन और मंदात्मा हो, मंदात्मा हो, कुल भेद कराधम, तुम कुल का सत्यानाश करने वाले हो, कुल भेद नराधम, कुल भेद कराधम, कुल को खत्म करने वाले हो, समझे। आज भी यही बात होती है, अगर कोई नालायक घर में पैदा हो जाए तो यही बोला जाता है तो कुल नाशक है, जैसे मार्केट में मिलता है कीटनाशक, ये कुल नाशक है। और क्योंकि प्रायः संसार में तमोगुण रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, कोई भक्त बन जाता है तो उसको ये कहते हैं, तू भक्त बन गया है, हमारा तो कुल ही खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा कुल का उद्धार हो रहा है, हिरण्यकश्यपु कहता है कुल भेद कराधम, तुम कुल को नष्ट करने वाला नहीं। हाँ प्रहलाद बोला नहीं, बोलता नहीं प्रहलाद, साधु है, लेकिन कोई तो समझाना चाहिए, लेकिन कोई है नहीं। इसीलिए व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द ऐसे बुद्धिमान लोग रखने चाहिए जो उसको सही सलाह दे। अब ये सब यस मैन वाले रखा, सब असुर, कंस भी ऐसे ही था, उल्टा कंस बीच में सुधर भी गया था जब दुर्गा का दर्शन हुआ, लेकिन उसके दुष्ट जो पार्षद थे उन्होंने उल्टा घुमा दिया था। तो इसलिए हमारे आसपास, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके कौन मित्र हैं, कौन आपके साथी हैं, कौन पार्षद है, अगर मूर्खों को रखोगे तो फिर कुछ नहीं होना, और लीडर भी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है मतलब वो उसका एफिशिएंसी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये उसका उल्टा खून पी लेते हैं। इसलिए वैसे व्यक्ति रखने चाहिए कि जो आपको एफिशिएंट बनाए। और तो कोई नहीं था हिरण्यकश्यप को यह बताने वाला कि भाई ये कुल भेद कराधम नहीं है, ये कुल भेद खत्म, ये कुल को नाश्ट करने वाला नहीं है, तो कुल का उद्धारक है, शास्त्रों में दिया है कि भक्ति करने से पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। एक लड़का आज भक्त बन जाता है, वो इच्छा करता है शुद्ध भक्त बनने का, क्यों जंजाल में पड़ना, मैं भक्ति करूंगा, प्रचार करूंगा, दुनिया को जरूरत है, तो पिता ये बोलता है कि तुमने तो हमारा कुल ही खत्म कर दिया। भौतिक रूप से सही भी है, आपका कुल खत्म कर दिया, क्योंकि आपका कुल को पूरा भौतिक जगत से निकाल के वो क्या कर रहा है, आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर कर देगा, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, आप हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हो। फिर कहता है हाँ स्तब्धम मच छासनोदृतम नेशत्वाद्य यम शयम, कहते हैं तुमने मेरा नियम तोड़ा है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो यही मानने लग गया था ना कि ये पूरा साम्राज्य मेरा है, और सब डरते भी थे, सब जय हिरण्यकश्यपु करते थे, तो साम्राज्य अपना ही सोचने लगा। बट आज मेरे को लगता है कि तुम यमराज के पास जाना चाहते हो, मैं तुमको आज यमराज के पास भेजूंगा, ये बात कहता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्यते त्रयोलोकः सहेश्वरः, त्रयोलोकः सहेश्वरः क्रुद्धंत, बोलते हैं तुम जानते हो प्रहलाद, जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोक कंपित हो जाते हैं। सही बात है, हिरण्यकश्यपु क्रोधित, जब राजा क्रोधित हो जाएगा तो प्रजा तो कांप जाएगी, क्रोध किस पे हुआ है, कई बार तो पता नहीं पड़ता ना, जब तक पता पड़े तो सारे देवता कांप जाते हैं, क्या हमसे गलती हो गई, अग्नि देवता कांप रहे हैं, इंद्र कांप रहा है, सूर्य कांप रहे हैं, चंद्र कांप रहा है, वायु कहाँ पर है? क्या मैंने थोड़ा ज़्यादा तेज कर दिया स्पीड या कम कर दिया? तो बोल रहा है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो तीनों लोक कांपते हैं। तस्य में अभितान अभितवान मूढ़ा शासनम किम बलो त्याग। ये किधर से तुम इतना शक्ति लाए हो? कौन है जो तुमको इतना शक्ति दे रहा है जो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्योंकि हिरण्यकश्यपु के अनुसार इस संसार में ब्रह्मा जी ने पावर दे दिया हिरण्यकश्यपु को, अब कोई और है नहीं। विष्णु को तो गिनता ही नहीं था। सही बात है, भगवान विष्णु तो यहां सृष्टि के हैं नहीं। तो अब प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्री प्रहलाद वाच न केवलम मे भवतास्त राजन सवई बलम बलिनाम च परेशाम परे अवरे अमी सिरा जंगमा ये ब्रह्मदयो ये न वशम प्रणीत। कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना कि मेरा जो शक्ति है या मेरा जो बल है उसका स्रोत कौन है? अरे वही जो आपके बल का स्रोत है। भगवान गीता में कहते हैं बलवानों का बल हूं मैं। तो बोल रहे हैं जो मेरा स्रोत है जो बल का, वही आपका भी है सेम। अब हिरण्यकश्यप ऊपर बैठा था है ना सिंहासन पे, ये नीचे बैठा था, नहीं तो फिर ऐसा वो सेम पिंच ऐसा कर देता है ना। पप्पा को जाके सेम पिंच होते हैं ना, सेम सेम कपड़ा पहनते हैं, तो सेम सेम हमारा एनर्जी का स्रोत है, कोई अलग नहीं है। अरे ये छोड़िए, इस संसार में स्थावर जंगम इस पूरे सृष्टि में जो भी चलता है नहीं चलता है, चरम अचरम मैं अध्यक्षना प्रकृति सुयते सचराचर। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है जो चर और अचर को चला रही है। हिरण्यकश्यपु भी उसी माया की शक्ति से चल रहा है, और माया किसके अंदर में चल रही? भगवान के अंदर। तो फिर कहते हैं कि स्थावर जंगम और इवन ब्रह्मा और देवता इस सब का स्रोत जो है वो भगवान है। पहले इसी को बोलते हैं जोर का झटका धीरे धीरे देना। पहले जब आया प्रहलाद तो थोड़ा सा बोला हिरण्यकश्यपु को, हिरण्यकश्यपु भगा दिया। दूसरी बार आया, पहले बोला कि जाओ बापू कुर्सी खाली करो, वानप्रस्थ आश्रम लो, वृंदावन जाओ, हरि के चरण का आश्रय लो, जाओ इधर मैं संभाल लूंगा। दूसरी बार आया, ठीक है तुम नहीं जा रहे हो यहीं बैठो, लेकिन श्रवण कीर्तन करो, भजन करो और फिलोसफी देखेगा। अब तीसरी बार आ रहा है और फिलोसफी दे रहा है। बोले लड़का आता है और आके मेरे को सिखा के जाता है, इतना देखा जाए तो बाप को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, किसी भी बड़े को उल्टा जवाब नहीं देना, लेकिन उल्टा जवाब नहीं दे रहा है। पूरी सभ्यता से शालीन कैसे है प्रहलाद महाराज, शालीनता से। देखिए एक होता उल्टा जवाब देना, ये तो प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, तब आके प्रहलाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने उल्टा जवाब दे दिया, तो पूछ रहे भाई तुम्हारा कौन है, भले वो गुस्से में ये प्रेम से बोल रहे। तो ये भी एटिकेट है जो हमको सीखना चाहिए। मर्यादा का पालन प्रहलाद महाराज नहीं छोड़ रहे हैं, बट फिलोसॉफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि मर्यादा पालन करते हुए कोई अगर बड़ा गलत है भी तो कैसे हम फिलोसॉफी से कॉम्प्रोमाइज न करें, यहां सीखना चाहिए। प्रहलाद महाराज कैसे कि मर्यादा को नहीं तोड़े, वो ये नहीं बोल रहे ए हिरण्यकश्यपु, ऐसा नहीं, वो बड़ा एटिकेट में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर सकते थे, अरे जो भगवान को हर जगह देख रहा है उसको किसका डर है, हर जगह भगवान का दर्शन, और अभी भगवान प्रकट होंगे। फिर कहते हैं कि ये ब्रह्मा आदि सब उनका शक्ति से चल रहे हैं ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद यद विभूति मत्तत्वम श्रीमदुर्जितम एव वा तत्तद एव वा एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान गीता में कहते हैं कि सारा संसार मेरा ही अंश है, अंश मात्र से चल रहा है, लेकिन ये हर कोई नहीं समझ सकता। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा, कौन मानेगा। आज आप जाइए पूरे दुनिया का पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन 750 करोड़, आप 750 करोड़ में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो इस चीज को मानते हैं। 1% तो बहुत हो गया ना, 7.5 करोड़ हो गया, उसका भी 1% कर लीजिए 7.5 लाख, उतने लोग भी नहीं मानते हैं, उसका भी 1% कर लीजिए 75,000, नहीं 7,500, उतने भी नहीं मिलेंगे। वासुदेव सर्वमिति, उसका भी 1% कर लीजिए 75 लोग शायद मिल जाएं जो ये मान जाए। इसीलिए बहु नाम जन्म नाम अंते, हम तो अभी तैयार हो रहे हैं, हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, हम सब साधक हैं ना। ये तो सिद्ध लोगों का बात किया जा रहा है, ऐसे सुदुर्लभ कौन है, महात्मा जो सिद्ध है। और सिर्फ सिद्ध पीठ बनाने से सिद्ध नहीं होता, कई सो कॉल्ड महात्मा है संसार में, तो सिद्ध पीठ लिख देंगे तो सिद्ध पीठ में बैठने वाला बाबा सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नागपुर में रहने वाले का सबका नाक नाक बन जाते क्या, कानपुर में रहने वाले का कान बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो सिद्ध पीठ लिख देंगे, सिद्ध बाबा लिख देंगे, नहीं, भगवान स्टैंप लगाना चाहिए, हाँ ये महात्मा है, वैसे भक्त कम है बहुत। तो आप सोच लीजिए 750 करोड़ से 75 पे आ गए, वो भी मुश्किल। फिर कहते हैं कि जो भगवान है वो पूरा सृष्टि को 3 गुणों से कंट्रोल करते हैं, ये भी भगवान गीता में बताया। वही गीता का ही आप समझ में आ रहा है कि भगवत गीता हर जगह आएगा, हैं तो कितने 700 श्लोक, उसमें से भी भगवान ने तो सिर्फ 574 श्लोक बोले, और ये 574 श्लोक हर जगह भागवतम में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए कृष्ण सार दिए हैं हमको, भगवत गीता सार है। अब क्या कह रहे हैं, तो तुम क्या करो, इसको छोड़ दो, ये जो तुमने असुरी भाव, जही असुरम भावम इमम तुम आत्मनः, ये जो असुरी भाव तुमने पाला है ना, पिताजी को बोलते हैं, ये जो आपके अंदर असुरी भाव है छोड़ दीजिए, क्योंकि कंट्रोल करने वाले भगवान है, आप नहीं हो। कोई भी व्यक्ति असुर कौन होता है, जो ये पहले तो जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता वो असुर है। हा? भगवान बहुमत पे नहीं चलते, ऐसा नहीं है कि आज कृष्ण भगवान है हम वोट देंगे फिर किसी और को भगवान बना देंगे, ऐसा होता नहीं। तपस्या से तो आपको मोक्ष न मिले लोग भगवान क्या बनेंगे, हिरण्यकश्यप भगवान बनेगा तपस्या से, तपस्या से तो मोक्ष भी नहीं मिलता है, सिर्फ भक्ति से। कल हमने सुना प्रहलाद महाराज कहते हैं तपस्या से नहीं होगा। तो जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता वो असुर है, जो भगवान की सत्ता को चैलेंज करता है वो महाअसुर है। तो ये ऐसे ही था, भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान को मारना चाहता था, उसीलिए तपस्या किया। तो बोल रहे असुरी भाव तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। फिर कहते हैं कि बहुत सुंदर यहां पे बात कह रहे हैं, जही आसुरम भावमिमं तमात्मनः समं मनोधत्वा न संति विद्विषः अर्ते अजदादात्मन उत्पते स्थित तद्धि अनंतस्य महत् समर्हणम्। संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु कौन है संसार में? ये जिसको हम शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु नहीं है, जिसको हम मित्र मान रहे हो मित्र भी, सब समान है। पंडिता समदर्शिना, शत्रु कौन है? अनकंट्रोल्ड माइंड, जो मन आपके वश में नहीं है, अनियंत्रित मन जो है वही सबसे बड़ा शत्रु है। आज हिरण्यकश्यप असुर बना तो क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। मैंने कहा ना कल कि लोग डिप्रेशन में है, हर जगह हर कोई डिप्रेशन में चल रहा है, लॉकडाउन स्पेशली। लॉकडाउन के पहले भी था लेकिन माया ने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, लॉकडाउन कर दिया तो क्या हो गया, वो डिप्रेशन का इंटेंसिटी बढ़ गया, जो थोड़ा था वो ज्यादा हो गया, जो नहीं था वो उस रेंज में आ गया। वर्क फ्रॉम होम, अरे क्या वर्क फ्रॉम होम करेगा, 1 BHK तो है अभी, वर्क फ्रॉम होम क्या करेगा? इसका कोई क्या महल है क्या, अकबर का कौन सा महल है अकबर का, लाल किला, ये लाल किले जैसा थोड़ी है ना। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, इसमें स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सेना है, तो फिर आनंद आ रहा है। राजा लोग करते थे वर्क फ्रॉम होम, सैनिक लोग मजदूर लोग कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, छोटा सा तो कुटीर निकले वो तो घर उसके लिए जंजाल बन जाता है ना। राजा लोग कहाँ किले से निकलते, जरा बड़े बड़े किले होते थे उनके, महल होते थे, निकलने की जरूरत ही नहीं। उनका जॉगिंग भी वहीं हो जाता था, जिम भी वहीं हो जाता, स्विमिंग भी वहीं कर लेंगे, उनके अलग से 2-3 रेस्टोरेंट भी इन हाउस रेस्टोरेंट हो जाते, अलग अलग रूम होते थे, अलग अलग रानियों के महल होते थे, तो बाहर जाने की जरूरत क्या, एंटरटेनमेंट उसके दरबार में आता था। राजा लोग बाहर नहीं जाते थे, कभी जाएंगे तो शिकार करने जाएंगे, वो अंदर नहीं कर सकते, अपने लोगों को थोड़ी मारेगा, तो बाहर जाएगा शिकार करने और युद्ध करने, नहीं तो अंदर घूमता रहेगा, इतना बड़ा है। अब कितने बड़े बड़े घर हैं देखिए लोगों के, ये इतने में तो पूरा 1 BHK फ्लैट घुस जाएगा, इतने तो हॉल में 1 BHK फ्लैट में बाथरूम किचन, वो भी बम्बई जैसे शहर में, हाँ इतना छोटा छोटा बाथरूम, छोटा छोटा यू नो सब, किचन छोटा बाथरूम छोटा, ऐसा होता है। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? लॉकडाउन वजह नहीं है, छोटा घर वजह नहीं है, मन। इसलिए अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, ये मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा मैं। तो जो व्यक्ति मन को नहीं जीत पाया वो इस संसार में हार गया, वो कुछ नहीं जीत पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा, कुछ जीत भी नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले मन पे काम करो। लेकिन प्रभु जी अब मन पे काम नहीं कर पा रहे, बहुत प्रयास कर रहा हूं, क्या करूं मन को? पहले दो चीजें होती हैं, एक तो मन को ऐसा झाड़ो ऐसा झाड़ो तो शौक में आ जाए, क्योंकि आपने मन की हमेशा सुनी है, कभी उसको डोज दिया नहीं है। आपका मन बोलता है देखिए, चलिए पढ़ाई वाला, अरे तू पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा है, फेल हो जाएगा, यही डरा रहा है ना, मन आपको डरा रहा है ना, फेल हो जाएगा, पढ़ाई कर रहा है फिर भी बोल रहा है कि डरा रहा है, तो मन को बोल दो ठीक है फेल हो जाऊंगा, तेरा पिताजी का क्या जाता है, मैं फेल हो रहा हूं ना। तो ये भी एक शॉक देना है, इट्स कॉल्ड द शॉक ट्रीटमेंट। मन बोलता है हम अच्छे से जॉब करो नहीं तो नौकरी चली जाएगी, अरे नौकरी होते हुए टेंशन दे रहा है तुम, नौकरी चली जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा, सुसाइड करवाएगा, तो उसको बोल दो माइंड को ठीक है नौकरी जाएगी ना उस दिन देखेंगे, अभी तुम जाओ, तुमको बुलाया नहीं ना, फोकट में कंसल्टेंसी नहीं खोलने का इधर घर में आके। तो माइंड आपको फ्री कंसल्टेंसी देता है लेकिन आपका जीवन हराम कर देगा, बर्बाद कर देगा। भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, नींद आ रही है, मैं बोल रहा हूं ना नहीं होगा, जाके सो जा, बोल दे प्रभु जी को नहीं करना है, नहीं हो रहा, आनंद तो मिल नहीं रहा है, 5 साल से चैंटिंग कर रहा है आनंद तो मिला नहीं, 10 साल से चैंटिंग कर रहा आनंद मिला, छोड़ दो ना। फिर मन को एक उठाओ जूता और मारो उसको। तो पहला तो यही भक्ति सिद्धांत को बोलते यही है, जूता मारना, झाड़ो मन, मन जो बोल रहा है ना उसको अपोज करो, लेकिन फिर आएगा, वो थोड़ा शौक में रहेगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो तब तक क्या करना चाहिए, एक बार उसको थप्पड़ मार देना चाहिए, थोड़ा झटके में रहेगा वो, तब तक मंत्र डाल देना चाहिए, मंत्र उसको पूरी तरह सुला देगा। मन के ऊपर भारी पड़ता है मंत्र, इसीलिए मंत्र आए थे इति मंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र, इसी से मन कंट्रोल में आएगा। लेकिन मंत्र जप करने नहीं देगा तो बीच बीच में उसको फिर इलेक्ट्रिक शॉक और थेरेपी देते रहने को। और अभ्यास, अभ्यास और वैराग भगवान ने बोला मन के लिए, तो बार बार आपको ये करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। मन प्रभु जी कितने साल करना पड़ेगा, कम से कम एक जन्म, कम से कम करते रहो, सोचो मत। फिर बोलते हैं प्रहलाद महाराज, दस्यान पुरा दस्युन पुरा सन्न विजित्य लुम्पतो मन्यंत एक सुजिता दिशो दाशा जितात मनोज्ञानस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभव कुत परे। बोलते हैं इस संसार में जो हमारे शत्रु हैं है नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन है। कौन है वो असली शत्रु, कौन है? हाँ, छह अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जिसने ये छह शत्रुओं को जीत लिया, उसके लिए संसार में कोई और शत्रु नहीं बचा। वो निडर होके घूमे, वो निडर होके घूमे। हिरण्यकश्यपु का शत्रु प्रहलाद नहीं था, नहीं, भगवान तो किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते ना। सुहृद सर्वभूतानाम, शत्रु कैसे हो सकते हैं भगवान? भगवान शत्रुघ्न है, शत्रु को खत्म करने हैं, शत्रु नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु विष्णु को, प्रहलाद को शत्रु मानता, एक्चुअली शत्रु उसका खुद का काम है। भगवान जब ऑपरेशन करेंगे तो शत्रुओं को ही खत्म करेंगे। जब हमको माया परेशान करती है और शास्त्रों के गुरु के इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आपके लिए नहीं है। कई बार शास्त्र में बहुत हैवी दिया रहता है, लोग उधर ही ऐसे इतना हैवी दिया है, वो आपके लिए नहीं है। आपका जो धूर्त मन है ना, जो आपको भगा रहा है, उसके लिए है। छोटा सा लड़का है, 8-10 साल का, तो मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले से कोई टपोरी आके इसको संग दे रहा है अपना, एक 12 साल का टपोरी आके, अरे आवारा लड़के, टपोरी लड़का, ये आके 8 साल के आपके बच्चे को खराब कर रहा है, उसको गाली सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है, नशा करना सिखा रहा है। आपको पता पड़ेगा, आप क्या करोगे? आप तो पकड़ के जो दूसरा लड़का है उसको दो घुमा के जितना देना है। अब जितना आसक्त आपका बेटा उस लड़के से, कभी कभी वो आ जाएगा, पिताजी क्यों मार रहे हो उसको, मेरा दोस्त है। तुमको तो नहीं मारा ना, मार किसको रहे? वो लड़के को जो आपको बिगाड़ रहा है, यानी वो अनर्थ है। तो ऐसे हमको जब सुधारा जाता है तो अनर्थ पे अटैक होता है, मन पे अटैक होता है, लेकिन हम मन से आ सकते हैं, हम बोलते हैं मेरे पे अटैक कर दिया। ऐसे ही पूरा संसार चल रहा है। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है, हिरण्यकश्यपु कहता है कि तुम मेरा इज्जत कम कर रहे हो, तुम मेरी वैल्यू समझते हो, तुम जानते हो, तुम मुझे सिखा रहे हो इंद्रियों को वश में करना, मेरे से अच्छा कर सकते हो क्या तुम? क्योंकि तो ब्रह्मा जी ने कहा था, न भूतो न भविष्यति, तुम जैसा कोई तपस्या न कर पाया है न भविष्य में कोई कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं, इंद्रियां तो फिर भी वश में नहीं थी हिरण्यकश्यपु की। तो बोलता है तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम ये जो बचकानी बातें कर रहे हो ना, ये मूर्ख है, ये मूर्खता है। हिरण्यकश्यपु को गर्व था, कोई भी साधक बहुत तपस्या करेगा हाँ, उससे उसका अहंकार ही बढ़ेगा। तपस्या से अहंकार बढ़ता, आज मैंने फास्टिंग किया, आज मैंने 64 माला किया, तो आपका अहंकार ही बढ़ेगा सिर्फ। इसीलिए गुरु के निर्देश में रहना पड़ता है, क्यों? भक्ति करना पड़ता है। बाकी दान देगा तो हमारा नाम होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए, वो आके बोलेगा भी कि वो मैंने पिछले महीने आपको दिया था ना पैसा, उसको ठीक उपयोग किया ना। हाँ हाँ ठीक था ठीक था। अच्छा अभी और दे रहा हूँ, जितना पिछले महीने दिया था ना अभी उसका डबल दे रहा हूँ, ये लो 110 रुपया। पिछले महीने कितना दिया था? 55 रुपया, अभी 110 रुपया दे रहा है। और बोल रहे हैं कि कैसे उपयोग कर रहे हो, इतना आसक्ति, जब अहंकार है तो फिर क्या फायदा यज्ञ दान तपस्या करने का? फायदा क्या जो आपका अहंकार बढ़ा दे? इसीलिए यज्ञ दान तपस्या जो है गुरु के निर्देश में होना चाहिए। तपस्या हमेशा गुरु के निर्देश में होना चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा, नहीं तो गुरु को भी आप बोलेगा गुरु कौन है, गुरु तो इतना ही, हमको गुरुदेव ने इतना बताया, देखो मैं इतना कर लिया, गुरु से भी आगे बढ़ गया, भक्ति नहीं मिलेगी। सब मिल जाएगा आपको, भक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पे हिरण्यकश्यप के साथ ऐसे हुआ, अहंकार हो गया तपस्या का, रावण को भी अपना तपस्या का अहंकार था, क्योंकि तपस्या से अचीवमेंट होता है ना, आपको तपस्या किया तो कुछ मिलेगा, उससे अहंकार हो जाता है। तो अगर आप तपस्या कर रहे हैं और नम्र नहीं हो रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा आपको। वो कौन सा होता है, RT-PCR के, PCR टेस्ट होता है ना कोविड के लिए, ऐसे हमको अपना टेस्ट करते रहना चाहिए रेगुलर। और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको सहारा लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा अहंकार बढ़ेगा। फिर बोलते हैं, तुम बोलते हो कि भगवान हर जगह हैं। अब ये चालू हो गया, अब इसका, अब ये भगवान पे आ गया। हाँ, बहुत भगवान भगवान कर रहा है प्रहलाद, तुम बोलते हो कि भगवान हर जगह है। प्रहलाद बोलता है बिल्कुल हर जगह है, सर्वत्र है भगवान, तो स्वयं भी है। और शुद्ध भक्त क्या करता है? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव हृदयेषु, वो हर जगह हर समय वो भगवान को देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में प्रेमांजन है, प्रेम का अंजन है। हमारी आंखों में कामांजन है, काम का अंजन है। देखो शरीर अपना ही नाक है, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर अहंकार कर रहे हैं संसार में लोग। देखो अरे कितना बड़ा व्यक्ति भी होगा, वो तो अपने मल मूत्र को कंट्रोल नहीं कर पाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 स्कंद भागवतम में कि हमारे मल मूत्र को कंट्रोल करने के लिए उसको भी रेगुलेट करते हैं देवता, वो भी एक देवता संभालते हैं। बोले मनुष्य ये भी नहीं कर पा रहा और भगवान बनने चला है, भगवान बनने चला है। तो अब कहाँ गए जितने भी सो कॉल्ड भगवान थे संसार में? बुलाओ ना, कोरोना को कुछ कराओ, फिर कोई बोलेगा। लेकिन असली जो भगवान है, चलो ठीक है डुप्लीकेट वाला गया, जो असली भगवान है कृष्ण, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो भेजा है हमको सुधारने के लिए। अगर ये मैकेनिज्म नहीं रखेंगे ना भगवान, हम बर्बाद कर देंगे अपने आप को भी, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। कैसे? उदाहरण, यहां पे अग्नि जल रही है और मैंने अपना हाथ रखा, क्या होगा? हाथ जल जाएगा? नहीं जलेगा, हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि भगवान ने मैकेनिज्म बनाया है कि नींद में भी अगर हाथ कहीं गया और डिस्कम्फर्ट हुआ तो इमिडिएटली ब्रेन से सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, हाथ की क्यों मैं रखूंगा, हाथ जलाना है क्या? थोड़ा गर्म ऐसे हाथ रख के मान लो बात कर रहा, सडनली किसी ने नीचे से आग लगा दी तो हाथ खींच लेंगे हम। तो ये मैकेनिज्म नहीं होगा तो क्या होगा पता? अब मान लीजिए सिस्टम नहीं है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन भगवान ने नहीं बनाया, अब हाथ रखा है, फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब खाना खाने जाएगा तो सिर्फ कुड़ता रहेगा, हाथ किधर गया? चला गया। तो ऐसे ही भगवान ने ये इस बॉडी में जैसे ऐसे बनाया। आप गाड़ी चलाते हैं, पैदल भी चलते हैं ना, तो पैदल चलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, छोटा कीड़ा पता नहीं मरने के लिए आ रहा है कि क्या करने आ रहा है, सीधा आपकी आंख की ओर जाता है, उसको क्या दिखता है पता नहीं, वो आंख चमकीली चमकीली होती है ना, मतलब रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्शन होता है, तो शायद अपने आप को देखने आ, सोचा चलो मिरर आ रहा है थोड़ा बाल बना के आऊंगा। सीधा आंख में कैसे घुसता है मेरे को तो समझ में, गाड़ी चलाओ सीधा आंख में घुसेगा, पैदल चलो सीधा घुस जाएगा आंख में। अरे और कहीं घुसो, कान में घुसो, मुंह में भी घुसता है लेकिन आंख में घुस जाता है तो मरने के लिए। तो कई बार आप देखेंगे वो अंदर चला जाता है, आप कई बार तो आप आंख बंद हो जाती, अपने आप बंद हो जाती है, वो बना हुआ है सिस्टम, नहीं तो फिर कई बार यहां से निकालते हैं। हाँ, मरा हुआ, कम से कम एक बार हरे कृष्णा बोल देना चाहिए बेचारे के लिए। तो ऐसे ही अगर भगवान इस सृष्टि में नहीं बनाएंगे ना, तो ये तो प्रकृति हम बर्बाद कर देंगे। तो जितना हम करेंगे उसका हिसाब मिलेगा हमको, समझे? अब बोलते हैं तो तुम्हारा भगवान भगवान बहुत कर रहे हो, हाँ इस खंबे में सडनली ऐसे हिरण्यकश्यप देखते देखते ना, तो महल है, महल में तो खंबे होते ही हैं, तो बोला इस खंबे में है तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद तो सब जगह देख रहे थे भगवान को, तो जैसे ही प्रहलाद ने कहा हाँ भगवान इस खंबे में भी है, तब वहां पे साक्षात नरसिंह देव आके बैठ गए थे उस खंबे में। भगवान हर जगह है और नहीं भी है, लेकिन उस खंबे में जहां प्रहलाद ने कह दिया तो आके साक्षात वहां पे बैठ गए, और प्रहलाद देख रहा है कि नरसिंह देव भगवान बैठे हुए हैं। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप अब समझ गया, बोला ये विष्णु को बहुत ढूंढा, ये विष्णु जाके छुप जाता है अपने भक्तों के हृदय में, वहां मैं घुस नहीं सकता, भक्त लोग क्यों हिरण्यकश्यप को अपने हृदय में घुसाएंगे, तो बोले वहां मैं जा नहीं सकता, ये विष्णु छुप जाता है जाके, डरता है मेरे से। इसीलिए तो जब हिरण्यकश्यप को तपस्या का फल मिला, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तब पहले क्या क्या घर नहीं गया था, घर नहीं गया था पहले, घर बाद में गया। सीखना चाहिए हिरण्यकश्यपु प्रभु से, मिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, उद्देश्य उसका गलत था लेकिन मिशन इंपॉर्टेंट था। जैसे उसको वरदान मिला वो तुरंत अपना घोड़ा गाड़ी उठाया और पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल किया, पहले इंद्र को भगाया, फिर सब सेट करके फिर घर वालों को बुलाया। मिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, सेवा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम में आए हैं और मंगल आरती कर लिए, मैं सो के आ जाता हूँ, सोने जाता हूँ, बेडरूम हमको खींच लेता है, फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा संसार में, प्राप्त नहीं कर पाएगा। आधा चैंटिंग हुआ थोड़ा सो के आता हूँ, अरे कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम कर लो, एक एक पड़ाव पूरा कर लो, खा पी के आराम से ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर सेवा पे लग रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप घर नहीं गया था, ये पूरा संसार में घूम के ब्रह्मांड में घूम के कंट्रोल किया, तब भी विष्णु को ढूंढ रहा था, विष्णु मिले नहीं, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। सारा गाही मखले तिलक गौर मिले ना, ये सिर्फ इतना तिलक क्या, पूरे शरीर पे तिलक लगा दो, गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेंगे, वो ऐसे दिखावे से नहीं मिलते हैं, आपकी शक्ति से थोड़ी आएंगे, वो अपने आप आएंगे, आपकी भक्ति अगर होगी तो कृपा करेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, मिला नहीं, क्योंकि पहला विष्णु को मारना चाहता था, विष्णु मिला नहीं। तब बोलता है विष्णु छुप गया अपने भक्तों के हृदय में, लेकिन भक्तों के लिए वो सर्वत्र है। तो अब जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि यस भगवान विष्णु इस खंभे में है, तो बोला हाँ, एकदम तैयार हो गया, एकदम यू नो स्लीव्स वगैरह फोल्ड करके, हाँ तैयार हो गया कि अब विष्णु पकड़ में आया है, इसको बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं मैं, अब ये पकड़ में आ गया, क्योंकि जो खंबे में आ गया तो उसको तो मैं इधर क्या बोलते हैं इसको, नारियल फोड़ते हैं ना बॉडी बिल्डर लोग, ऐसे नारियल फोड़ते, ऐसा इसको पकड़ लूंगा मैं, इसको ऐसा लगा ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट तभी भी था, कोई मना थोड़ी किया, जो भी सोचना हिरण्यकश्यपु सोच सकता है, बोलेगा भी, लेकिन भगवान के पास भी फ्रीडम है ना, पूर्ण फ्रीडम है। तो भगवान भी जो बोलेंगे, जो भगवान ना बोलेंगे ना सोचेंगे, सीधा करेंगे। टाइम नहीं है, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी केस होता है, आप किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, आपके शहर का टॉप डॉक्टर को, और सब ऑपरेशन थिएटर पूरा तैयार हो जाता है, पेशेंट तैयार, ये तैयार, डॉक्टर आके सिर्फ ऑपरेशन करता है। अभी इमरजेंसी सिचुएशन, भगवान नरसिंह देव आके सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे, पहले कुछ और नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। हाँ, तो भगवान तो ऐसे ही युधिष्ठिर को बोले, नहीं है दुर्योधन बोला प्रभु भगवान को, बोले वासुदेव जब शांति दूत बने, मैंने आपके लिए इतना अच्छा आयोजन किया, आप आए नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो, दो कंडीशन होती है जब कोई किसी के घर जाके खाता है, एक तो वो भूखा हो, मैं भूखा तो हूं नहीं, दूसरा जब उसके साथ प्रेम हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई खास प्रेम है नहीं, तो हिरण्यकश्यपु का क्या खाएंगे, न भगवान भूखे हैं न हिरण्यकश्यपु से प्रेम, तो सीधा आके ऑपरेशन करेंगे। तो इसको लगा कि अब ये खंभे में पकड़ लिया मैंने विष्णु को, मेरे ही घर में, हाँ मेरे ही घर के खंभे में आके फंसा है, इसको लगा फंस गया। चूहा थोड़ी है कि आपने वो चूहा पकड़ने वाला जो ट्रैप में फंसा लिया, अब जो चाहो कर लोगे, और भगवान है ये जो पूरी सृष्टि है ना, तुम्हारे को मिला के हिरण्यकश्यपु, जो पूरी सृष्टि है ना, ये भगवान के पेट में एक छोटा सा हिस्सा है। अब भगवान को कहाँ तुम पकड़ने चाह रहे हो, तो फिर उसने अपना निकाला तलवार, खड़क तलवार निकाला और उठा, अभी तक बैठा हुआ था दरबार पे, उठ के आया। इसके पहले भी एक घटना है, भागवतम में नहीं, अन्य पुराण में दिया हुआ है कि हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी को बोलता है, मर नहीं रहा है, कैसा जन्मी है तू, मरता ही नहीं है। हाँ, तो पत्नी अंदर से तो खुश है, चलो हमारा बच्चा सेफ है, हिरण्यकश्यपु मार नहीं पा रहा था, तो बोले एक काम करो, ये हलाहल जहर है, एकदम काला कालकूट जहर का एक गिलास हिरण्यकश्यपु देता है, बोलता है जा अपने बच्चे को पिला, हो सकता है मेरे से न पिए, पी भी लेता, हिरण्यकश्यपु को कभी अनादर नहीं किया, पी लेता। तो जब माता लेके आती है, कयाधु लेके आती है, रोती हुई, नहीं चाहती थी, कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को मारना, तो जब देती है तो देखते हैं जब प्रहलाद महाराज, एक तो भक्तों का एक आदत होता है जो कभी सुधरने नहीं वाले और नहीं सुधरना भी चाहिए, जो मिले भगवान को पहले भोग लगा देते, तो ये प्रहलाद को जहर का पूरा काल कुटुंब दिया। सबसे पहले तो भगवान उसका, प्रहलाद ने रंग देखा सांवला रंग, तो उसको तुरंत प्रभु का और स्मरण हो गया। क्या स्मरण हुआ कि भगवान लेटे हुए हैं गर्भो दक्षाय विष्णु, और लेटे हुए हैं वो देख रहा है भगवान, वो रंग से भगवान का स्मरण हुआ, भगवान दिख गए, भगवान को भोग लगा दिया, पी भी गया, अब तो महाप्रसाद हो गया ना, जहर का तो असर काट दिया था। तेरे ने कुछ बड़ा फ्रस्ट्रेट था, बोला इसको नहीं मार पा रहा हूं ना, इसको जो शक्ति देता है वो तो पकड़ में आ गया, अभी उसको मारूंगा। तो तुरंत उठ के आया, अपनी तलवार निकाला और जोरदार वार किया उस खंभे पे, अपनी पूरी शक्ति लगा के, तलवार हाथ में थी लेकिन मुक्का मारा कि पहले तो खंभा तोड़ूंगा, फिर भगवान को निकालूंगा, फिर भगवान को मारूंगा। हाँ, तो तलवार पकड़ा, जैसे कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, एक हाथ में खड़ग तलवार था, इसने तलवार रखा और ऐसा मारने गया था और मारा, और जैसा ही खंभे को मारा ऐसा गर्जना हुआ, बड़ा भीषण आवाज हुआ, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक आवाज फैल गया, और कोई नहीं समझ पा रहा है आवाज आया कहां से, सारे देवता लोग बोल रहे हैं अभी खत्म, अभी प्रलय आ गया, भगवान को क्रोध आ गया, मतलब सब खत्म होने वाला है, ये ब्रह्मांड गया। और जितने देवता थे वो तो आधे तो मूर्छित हो गए, ऐसे ही मूर्छित देवता नहीं सॉरी, जितने राक्षस थे सब मूर्छित हो गए, समझ नहीं पा रहे, हिरण्यकश्यपु सोच रहे आवाज आ कहां से रहा है, कहीं भी आवाज होगा तो हम ढूंढते हैं ना पहले सोर्स कहां पे है। लेकिन ये जो गर्जना हुई है इसको तो एक्सप्लेन करना भी कर पाना भी असंभव है। भगवान क्रोध में है, भगवान का स्वरूप तो भगवान कृष्ण है, लेकिन वही कृष्ण जब भाव में आ जाते हैं तो जगन्नाथ बन जाते हैं, लेकिन वही कृष्ण जब क्रोध में आ जाते हैं तो नरसिंह देव बन जाते हैं। तो यहां पे हिरण्यकश्यपु ने देखा, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सबके हृदय में डर आ गया। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ में, सभी जितने भक्त थे उनके हृदय में एक आनंद उत्पन्न हुआ, एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हुआ, क्योंकि कंस ने सबको मना कर दिया था, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब बंद कर दो मंदिर। तो तुरंत उनके मन में यज्ञ करने का एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हुआ और सब यज्ञ करने लगे। भगवान आ गए, भी डरो मत। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप और दूसरे असुरों में क्या हो रहा है, भगवान के प्रकट होने से डर पैदा हो गया। कंस को ऐसे ही नहीं मारे थे, कंस को तो 11 साल सताए थे, क्योंकि देवकी को सताया था ना, कम से कम 8 साल तो सताया था, 8 बच्चे अगर एक एक साल भी ले लो तो 8 साल सताया था देवकी को। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे, तो इसको बहुत सताया। तो ऐसे ही भय पैदा करते हैं भगवान, किसमें, जो ईर्ष्या करता है भगवान से, जो द्वेष करता है। जहां भगवान अपने भक्तों के हृदय में भय को खत्म करते हैं, वही जो अभक्त है, जो असुर है, उसके हृदय में भय बढ़ता है। प्रभुपाद जी 1942 की बात है, अपने घर कलकत्ता में बैठ कर लिख रहे थे, गीता पे कमेंट्री लिख रहे थे। जापान का और इंग्लैंड का जमता नहीं था, इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस जापानी आर्मी के साथ मिल गए ना, और लेके आए थे इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी, क्योंकि वो देखे, क्योंकि जापान को चाहिए था इंग्लैंड आउट इंडिया से, तो इसीलिए जापान से दोस्ती की। तब जापान ने अटैक किया था इंडिया पे, गोला बारूद डालता था, जापान पावरफुल था ना, वो तो 1945 के बाद ठंडा पड़ गया। तो फिर प्रभुपाद सब लोग कलकत्ता शहर छोड़ के जा रहे थे, बॉम्ब गिर रहा ना, शहरों में बॉम्ब गिर रहा था, कलकत्ता छोड़ गए। प्रभुपाद बोले किधर जाना है, अरे ये बम थोड़ी तो कृष्ण है। प्रभुपाद जी वहां पे भी कृष्ण देख रहे हैं, बोले अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो फिर कहाँ भागूंगा, कोई ऐसी जगह है जहां कृष्ण नहीं पहुंच सकते। बड़ी असुर डरते हैं, इसीलिए जो भक्त होता है उसको किसी से भी डर नहीं लगता। जितना हमारा हमारा मीटर होता है ना चेक करने का, हमारा कितना भक्ति, कितना विश्वास है भगवान पे, जितना हम डरते हैं उतना हमारे भक्ति में कमी है। जितने निडर हैं हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में निडर हो तो उतना आपका भक्ति है, ये भी चेक कर सकते हैं हम। तो यहां पे कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृष्टयाद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न मृगम न मानुषम। ये तो न मनुष्य है, हिरण्यकश्यप वो देखने लगा, जब देखा भगवान को आवाज का स्रोत, भगवान प्रकट हुए, आसमान को छू रहे थे भगवान। अलग अलग आचार्यों ने कमेंट्री दिया, नरसिंह पुराण में वर्णन है, अलग अलग रूप से मारेंगे, अभी आएंगे तो भगवान का साइज का पता पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले ये है क्या चीज। हाँ डर तो लग रहा था, लेकिन बड़ा अजीब एक यू नो कंफ्यूजन भी था कि कौन है भाई ये, मनुष्य है नहीं, पशु है नहीं है, न मृगम न मानुषम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। किए ना महाभारत युद्ध में भीष्म और अर्जुन दोनों का वचन रखे, अर्जुन जयद्रथ को मारूंगा वचन उसका भी रखे, भक्त का वचन रखते हैं भगवान। इसीलिए अगर एक जगह भगवान मिले और भक्त मिले ना शुद्ध, तो भक्त के पास जाना पहले, भगवान आशीर्वाद दे ना दे, भक्त ने आशीर्वाद दे दिया ना, कृष्णेर मते रस्तु, कि आपकी मति कृष्ण में हो तो हो जाएगा। कृष्ण आशीर्वाद ये नहीं देंगे, इसीलिए भक्तों का, इसलिए गुरु का पैर पहले पकड़ना चाहिए। हम लोग इतने दुष्ट हैं, हम क्या भक्ति कर पाएंगे, इसीलिए प्रभुपाद जी का चरण पकड़ के रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, बोलेंगे दे दो इसको, तो भगवान दे दें। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं राधा रानी के पास जाना चाहिए, राधा रानी देखेगी बोलेगी भगवान को, प्रभु ये कितना अच्छा भक्त है, मुझसे भी अच्छी भक्ति करता है, इस पर कृपा कर दो। और क्योंकि राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, तो भगवान मना नहीं कर पाएंगे और हमें आशीर्वाद दे देंगे। तो ब्रह्मा जी का वचन पूरा किए, हिरण्यकश्यपु ने अलग अलग वचन मांगे थे ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं, अब सब तोड़ेंगे। फिर चार कुमारों का वचन, उनका वचन पूरा किया, प्रहलाद का वचन, नारद मुनि का, सबका एक साथ हो गया। स्तंभे सभायाम, स्तंभ से निकले तो देख रहा हिरण्यकश्यपु की क्या है ये। और अब वर्णन आता है भगवान नरसिंह देव के, तीन श्लोकों में, चार श्लोकों में हम वर्णन को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान के रूप का वर्णन है। हिरण्यकश्यपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देख रहा है। भक्तों को भी भगवान का कैसे दर्शन कर रहे, ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, भगवान ने चरण में कितनी अंगूठी पहनी है, देखते हम क्या, हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं राधा राजबिहारी का, देखना चाहिए कृष्ण ने कितनी अंगूठी पहनी है पैर पे, कितने फूल हैं पैर में। अच्छा, आज ये फूल है, आज वो फूल है, दोनों भगवान के पैर के बीच में कौन सा फूल रखा हुआ है, कौन सी डिजाइन का भगवान ने नुपुर पहना हुआ है, कौन सा धोती पहना हुआ है, कैसी एम्ब्रॉयडरी है, क्या कलर है, कौन सा स्टाइल है। जब ये सब देखना चालू करेंगे ना, तो फिर स्त्री की सुंदरता में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तो स्त्री का रिफ्लेक्शन है, वो भी परवर्टेड, क्योंकि हम यहां नहीं ध्यान लगाते, इसीलिए मन भटकता है बाहर। संसार की सुंदरता, हमें सुंदरता क्यों लगती है, जो है ही नहीं। भगवान बोलते एक अंश है नो स्थितो जगत, एक अंश में तो पूरा स्थित कर दिया, लेकिन यहां जो पूरी फैक्ट्री है वो आप नहीं देख रहे, क्योंकि नहीं देख रहे हैं इसीलिए मन भटकता है। तो ध्यान से देखना चाहिए कौन सा धोती पहना है, क्या एम्ब्रॉयडरी है, कैसे डिजाइन है, कुछ लेस लगाया है क्या ना? फिर थोड़ा ऊपर जाते कमर में भगवान करधनी पहनते हैं, कौन से कलर की करधनी पहनी है, गोल्डन है, सिल्वर है, क्या पैटर्न है उसका ज्वेलरी का। फिर एक कमर में पट्टा लगाते हैं, पट्टा मतलब कपड़ा पहनते हैं, तो वो कौन सा कलर का है, कौन सा कपड़ा है। फिर ऊपर जाएंगे तो भगवान के अलग अलग मोतियों की माला पहनते हैं, अलग अलग कलर की, वो ध्यान देना चाहिए। कम से कम चार पांच अलग अलग ज्वेलरी पहनते हैं, फिर फूलों की माला पहनती है, वो कैसे है। फिर हाथ पे कितनी अंगूठी है, भगवान के हाथ की मुद्रा कैसे है, कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसे है, ऐसे है, कैसे है मुद्रा। और बंसी बजा रहे हैं, बंसी पे क्या है, मयूर है क्या बंसी के एंड में, बंसी में ज्वेलरी है क्या, ये सब देखते हैं। फिर भगवान के यहाँ पे ज्वेलरी लगाते हैं कभी कभी पुजारी, यहाँ पे एक लगाते हैं, नाक में एक लगाते हैं, यहाँ पे सजाते हैं, कान में कौन सी बाली पहनी है। भगवान के रूप का वर्णन तो है कितना जगह भागवतम में, हम क्यों नहीं, हमको बोर लगता है, हम देखते नहीं, ध्यान से देखना चाहिए, इसको बोलते हैं दर्शन। भगवान कपिल देव ये बताते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे लेना चाहिए, नीचे से प्रारंभ करना चाहिए चरणों से, ऊपर तक जाना, एक 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 भगवान ने क्या श्रृंगार। और डेली देखोगे उस पर, मेडिटेट करोगे बस, फिर इस संसार की सुंदरता आपको फीकी लग जाएगी। तो ध्यान से देखता हिरण्यकश्यपु भगवान की आंखें कैसी हैं, जो क्रुद्ध आंखें हैं, क्रोध में है ना, भगवान के शुद्ध भक्त को सताया है तो अभी क्रोध भी देखो, तुम बड़ा क्रोध दिखा रहा था ना हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा क्रोध तो रिटेल है, अब देखो फैक्ट्री आई है क्रोध की, तुम जो क्रोध दिखा रहे हो तो कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, बड़ा क्रोध दिखा रहा था हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद को। अब देखना क्रोध किसको कहते हैं। आंखें पूरी कैसी हो गई हैं, जैसे पिघले हुए सोने से, एकदम भयानक चमक रही थी आंखें। और गर्दन के बाल कैसे थे, सिंह का मुंह था ना, गोल्डन बाल, एकदम एकदम गोल्डन चमक रहे थे। उनका मुखमंडल कैसा था, वो कृष्ण जिनके मुख को देखने के लिए सब आते हैं, लेकिन नरसिंह देव पूरा विपरीत, भक्त तो भगवान से तभी प्रेम करता है, तो नरसिंह देव का मुखमंडल कैसा है। उनकी दांत जैसे मृत्यु, उनके दांत कैसे थे, एकदम मृत्यु जैसे भयानक दांत, कि अब भी खत्म कर देंगे सब कुछ। उनकी जीभ, शेर शेर की जीभ कैसे होती है, लंबी जीभ फड़फड़ाती हुई इधर उधर चल रही थी, और एकदम कान बड़े बड़े खड़े थे, स्थित थे। उनके नखून, नखून देख लिया, यही तो यही से मारेंगे तो फिर नखून देखता एकदम शार्प, जैसे वज्र होता है, जैसे इंद्र का वज्र है। और उनका जो नथुने हैं, नथुने मतलब नॉस्ट्रिल्स, ये खुले हुए हैं, क्योंकि क्रोध में है ना, क्रोध में ये बड़े हो जाते हैं। कभी भी देख रहे हो मुख भी खुला हुआ है, एकदम गुर्रा रहे हैं, तो एकदम गुफा के जैसे लग रहे हैं। उनके जबड़े फैले हुए थे, और जिससे भय उत्पन्न हो रहा था, खुला हुआ था ना, भगवान मारने के लिए आ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु कभी हमारा मायापुर में विग्रह का दर्शन कर लेंगे, अभी मत करना, अभी तो चंदन लगा, आज आज चंदन हटेगा, अभी अभिषेक चालू हो गया होगा वहां पे, 4 बजे हो जाता है, चंदन लगा रहे थे भगवान। वैसे पता नहीं इस्कॉन के भक्तों को नरसिंह देव वैसे नहीं दिखते जैसे हिरण्यकश्यपु देख रहा है। इस्कॉन के भक्त बोलते ओ नरसिंह देव इज सो क्यूट, बेटा तुम भक्ति करते हो ना इसीलिए तुमको क्यूट लगते हैं, और वो भी मायापुर धाम में औदारे रूप लेके बैठे हैं, सामने आ जाएंगे ना तो सिर्फ शुद्ध भक्ति बोलेगा भगवान कितने सुंदर है, नहीं तो घबरा जाएंगे। एनीवेज, और उस पर भी ये चंदन लगाते हैं ना अभी, तो चंदन में तो और क्यूट दिखे, एकदम सुंदर दिखते हैं। सुंदर तो वैसे भी है, भगवान सुंदर है, लेकिन आज चंदन हटेगा तब वो उनका जो खूंखार रूप है, जो उग्र रूप है, वो दिखेगा। अभी 4 बजे अभिषेक चालू हो गया होगा वहां पे। और उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी, उनकी छाती चौड़ी, कमर पतली है? उनके शरीर के रोए चंद्रमा की, शरीर पे बाल थे एकदम चमकीले वाइट, जैसे चंद्रमा की किरण है। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैली थी, एक भक्त ने एक विग्रह बनाया है, 16 भुजाओं वाला नरसिंह देव, छोटा सा है, 1 फीट का, 16 भुजाएं। मैं देखा जाके दर्शन लिया, और एकदम सुंदर, 10 भुजाएं, 8 भुजाएं, 16 भुजाएं थी, है मतलब। तब वे असुर धूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख चक्र गदा कमल तथा अत्यंत अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र के वध कर रहे थे। तो ये भगवान का अब चालू होगा लड़ाई, तो यहां पे बोलते हैं अब युद्ध चालू होगा, जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं 7 दिन से। जनरली महाभारत बचपन में हम लोग देखते थे, रामायण देखते थे, और बाकी सब नहीं, युद्ध हो रहा ना, मजा आता था, तीर इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, 2 तीर टकरा रही है, भूम करके ऐसा चमकता था, दोनों गायब, हाँ, फिर एक का टूटता था तीर, दूसरे का तीर कहीं, अच्छा एक का तीर टूटा तो दूसरे का तीर कहाँ गया पता नहीं पड़ता था। एनीवेज, वो अच्छा लगता था युद्ध, तो यहाँ पर युद्ध हो रहा है। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, आपको थोड़ा सा बताते हैं। रावण राम को मारने के पहले बलि महाराज के पास गया, यानी मारने के पहले मतलब युद्ध के पहले, तो मारना चाहता था, खुद ही मरेगा। बलि महाराज के पास जाता है रसातल में आशीर्वाद लेने, बलि महाराज उसके पूर्वज है, यही रावण हिरण्यकश्यपु था। तो वामन देव भगवान, जो भगवान विष्णु है, वो रोक देते हैं, किधर, बोले बलि महाराज से मिलना, चल भाग। दे आर विजिटिंग पास लेके आए, ई पास, ओ पास नहीं, ई पास, है ना, गांव में बोलते हैं ना ई पास, ओ पास, ये वाला नहीं, ई पास लेके आ जा, इंटरनेट पे अप्लाई करो, अरे मेरा करो तुम। तो सोचा रावण बोला रे इधर तो काम नहीं होने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। तो चींटी का रूप ले लिया, मायावादी तो था, मायावी तो था, चींटी का रूप ले लिया और चींटी के रूप में अंदर जा रहा था। अब किसको बेवकूफ बना रहा है? भगवान को। ये मूर्ख लोग होते हैं ना, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन जानबूझ के करते हैं, इसी को मूर्ख कहते हैं ना। तो वामन देव ने देखा भगवान वामन देव चींटी जा रही, रावण चींटी के रूप में जा रहा, रखे उसके ऊपर ऐसा पैर, फड़फड़ाते हुए अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, जैसे पूतना को थोड़ा सा और किस्तन को दबाए थे तो अपने असली रूप में आ गई थी, तो ऐसे ही दबाए। आचार्य कहते हैं कि जब रावण के ऊपर पैर रखा वामन देव ने, तब रावण को ये समर्थ मिला कि राम का बाण अपने शरीर में सह सकेगा, ले सकेगा, मतलब वो भी क्वालिफाइड नहीं था। भगवान के साथ लड़ना, भगवान के हाथों मरना, कई बार ऐसे लगता है भगवान हमें भी आके मार दे, खत्म झंझट, हम उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए भाई। ये देखो ये कितनी तपस्या किया बेचारा भगवान के हाथ मरने के लिए, हाँ भगवान के हाथ मरने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, इसीलिए उससे सरल है भक्ति करना। तो तब अंदर जाते हैं, रावण अंदर जाता है बलि महाराज से, बलि महाराज बोलते हैं अरे तुम, अरे इधर आओ दिखाता हूँ तुमको कुछ, और ले जाते हैं बड़ा विशाल पर्वत, सोने का विशाल पर्वत, मोती हीरे सब जड़े रहते हैं। देखता रावण, बोलते हैं मेरी पूरी लंका बेच दूंगा ना तो भी इसका एक हिस्सा भी नहीं खरीद पाऊंगा, इतना विशाल। बलि महाराज बोलते तुमको चाहिए? सीता को छोड़ दो, तुम मूर्ख है, इसको ले जाओ। अरे सब छोड़ दूंगा, दे दो, अरे उठा लो, उठाने का प्रयास होता है उठा लूंगा, उठाने का प्रयास करता है उठा नहीं पाता। रावण कितना शक्तिशाली था, तो हम तो कलयुग के जीव हैं, रावण तो त्रेतायुग में था, तो और बड़ा भयावह शरीर था उसका, बड़ा शरीर था। तो फिर बलि महाराज बोलते हैं ऐसा एक और है, एक और है, अरे एक तो दे दो, तो तुमको तो बोल रहा उठा के ले जाओ, उठा नहीं पा रहे तुम, दूसरे जगह पे ले जाते उसको, एक और बोले है क्या चीज? बोले हमारे परदादा हिरण्यकश्यप के कान का कुंडल का ये पत्थर है, कुंडल तो लटकता है उसमें छोटा सा एक जेम होता है, ये वो है, ये हिरण्यकश्यप का कान का कुंडल है। तो हिरण्यकश्यप कितना बड़ा होगा हिसाब नहीं लगा सकते हम लोग, हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाएगा ना तो फिर आप कता क्या करोगे? हरे कृष्ण, अब बस खत्म होना है, तो उस समय कैसा आदमी कैसे हो जाएगा, ये सुनामी उनामी बच्चा हिरण्यकश्यप के सामने, ऐसा साइज था। और ये हिरण्यकश्यप से नरसिंह देव 120 गुना बड़े थे, ये विशाल नरसिंह देव आए। हम लोग इमेजिन, छोटे छोटे बौने लोग हैं हम लोग, छोटे छोटे से 6 फुट का आदमी, अब वो सोचता है देखो मैं कितना लंबा हूं, ऐसे होते थे। अभी तो घर भी छोटे छोटे बन रहे हैं, अभी तो सीलिंग 8 फिट पे, 9 फिट पे, 12 फिट बहुत हो गया सीलिंग, फ्लैट्स बन रहे हैं ना नए नए, देखो छोटे छोटे सीलिंग बनती है, उसमें भी फॉल सीलिंग आ जाती है। अभी तुमको क्या करना है, तुमको तो हाथ उठाना है बस, 5 फिट, 5.5 फिट का आदमी है, 1.5 फिट का हाथ और पकड़ लो, 7 फिट बहुत है, आधा फिट और छोड़ देते हैं, और क्या करेगा। तो इतना विशाल हिरण्यकश्यप नरसिंह देव के सामने कैसा लग रहा है, जैसे अग्नि के सामने पतंगा होता है और लड़ने आया है। ये तो ना हम दिखाने के लिए पेंटिंग में दिखाना पड़ता है, अगर ऐसा ओरिजिनल साइज दिखा देंगे तो हिरण्यकश्यप तो दिखेगा ही नहीं ना, तो युद्ध में मजा कैसे आएगा, इसीलिए मूवी वाले दिखाते हैं हमको पेंटिंग में दिखते हैं, नहीं तो गोद में रखे, गोद में दिखाई नहीं था, अलग अलग ना हिरण्यकश्यपु को जब नरसिंह इतना क्रोध में थे, पहले तो लड़े क्योंकि दोपहर में प्रकट हुए थे, दोपहर में प्रकट हो गए भगवान, लेकिन उसको मारना कब है, शाम को। तो कितने वरदान मांगे थे, सब पूरा किया, न पशु मारना चाहिए न मनुष्य मारना चाहिए, ये कंबाइंड फॉर्म आ गया, ये सोचा भी नहीं था उसने। नया वैरायटी है भाई। तो फिर न अस्त्र से न शस्त्र से, तो सबको तो अस्त्र शस्त्र से मारे, इसको नाखून से मारेंगे। अब नाखून तो कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन नाखून से ही मार दिए, न घर के अंदर न घर के बाहर। तो पहले तो भगवान खेल रहे थे उसके साथ, चल आ जा अपना बैट लेके आ, दोनों भगवान खेल रहे थे उसके साथ, चल। ऐसा लगता था कि हिरण्यकश्यपु थोड़ी देर जीत गया था, भारी भगवान ठीक है थोड़ा खेलने दो ना, अभी तो टाइम अभी हुआ नहीं ना, अभी टाइम बाकी है। तो न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पे ले जाके मारे, चौखट पे खड़ा, न जमीन पे न आसमान पे, अपनी जंघा पे बैठा दिए, खुद बैठ गए भगवान और अपनी जंघा पे रख लिए, उठा लिए, छोटे बच्चे को जैसे उठाते, उठा के जंघा पे रख लिए। सोचिए हिरण्यकश्यपु का क्या हाल हुआ होगा, जैसे हम लोग भी नहीं समझ पा रहे ना, उग्र रूप कैसा होगा, भगवान का क्रोध कैसा होगा, वो भी भगवान के भक्त को सताए तो क्रोध क्या होगा, वैसा क्रोधित रूप और हिरण्यकश्यपु गोद में भगवान। हमको पता नहीं कि डायपर पहना था कि नहीं पहना था, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हमारा तो धोती गीला पीला हो जाएगा। ना एक एक आदमी था शेर सिंह बिहार में, उसका नाम था शेर सिंह। एक दिन बंदूक उठा रहा है वो, दो नली वाली बड़ी बंदूक, गांव से बाहर जा रहा है, गांव ने पूछे किधर जा रहा है शेर सिंह। अरे ये शेर जो दहाड़ता है आदमखोर बन जाएगा, अंदर आएगा उसको वहीं मार के आता हूँ गुफा में। तो शेर सिंह जंगल की ओर जा रहा है, अब जंगल में जा रहा है बंदूक, अभी शेर की दहाड़ 1 किलोमीटर दूर तक जाती है क्लियर। तो जब शेर निकला होगा दोपहर का आराम अपना, नींद पूरा करके अंगड़ाई लिया बाहर निकला और दहाड़ा, गुफा से निकलेगा तो पहले तो दहाड़ेगा, दहाड़ा। ये शेर सिंह बंदूक लेके खड़ा है, इसका बंदूक छूट गया और धोती पीला हो गया। गांव का आदमी था, सफेद धोती पहना हुआ था, ऐसा तो हालत हो जाता है हमारा। और ये जो असली सिंह है, हाँ ये तो नकली सिंह में देख के ऐसा रहते, और नरसिंह है ये देख के हिरण्यकश्यपु, इमेजिन कर सकते हो आप जितना डरे हो गए अभी तक जीवन में, कुछ नहीं है जब ये डर लगा होगा, इसको उठा लिया उसको। जितने वरदान थे, ब्रह्मा जी की सृष्टि, एक्चुअली भगवान किसी भी रूप में आते तो भी ठीक था, क्या वरदान था, मेरी सृष्टि से तुमको कोई नहीं मारेगा, जिसको मैंने भगवान को मैंने थोड़ी बनाया है। तो भगवान तो किसी भी रूप में आते, लेकिन अद्भुत रूप दिखाना चाहते हैं भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में कि जब भगवान ने मार दिया हिरण्यकश्यपु, तो ब्रह्मा सब देवता आ गए शिव जी, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं नरसिंह देव भगवान अगली बार ऐसा वरदान मत देना, थोड़ा सोच समझ के दिया करो, मेरे को तकलीफ हो जाती है। एक रस की बात है, देखिए रस को तत्व से नहीं, ऐसे तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं, जो भगवान ने बोला ही था जितना भी वरदान लिया हो मैं उसको तोड़ दूंगा, लेकिन रस की बात है। तो उठाए और फाड़ना चालू किया, अब इतने क्रोध में थे, भगवान आए, भगवान बोले अरे हम आए हैं हमारा स्वागत तो करो, वो कोई स्वागत ही नहीं कर रहा। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को जब पेट फाड़ा, उसी का अतड़ियों को निकाल लिए और अपने गले में माला लगा लिया उसको। आप किसी को मारोगे, कभी देखा ऐसा मारते हुए, भीमसेन जब मार रहा था एक दिन पे 30 भाइयों को मारा था एक दिन पे, और जब दुशासन को मारा था, बाप रे, दुशासन को हाथ से मारा था, हाथ से दुशासन का छाती फाड़ दिया था मारने के बाद, उसका हृदय दिख रहा है, उसका हृदय से खून पी गया, बोला था ना दुशासन तेरा छाती फाड़ के तेरा खून पीऊंगा, हृदय से पी गया। दुर्योधन खड़ा देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ कुछ आचार्य कहते पिया नहीं था, हाँ मुंह जरूर डाला था उसके हृदय में और खून यहाँ पे रखा था, अंदर नहीं दिया था। असुर का खून कौन पिएगा? लेकिन जो भी है तो मुंह तो डाल पूरा मुंह में खोल, और अब ऐसा तो नहीं ना हंसते हंसते ए दुशासन छाती खोलो। हाँ वो बचपन में एक ऐड आती थी पान पसंद, याद है? वो गुस्सा करता है कोई, फिर उसको उसे टॉफी खिला देते हैं पान पसंद, हाँ फिर वही गुस्से वाली बात को प्रेम से बोलता है। ऐसे तो नहीं मार सकते ना आप, क्रोध तो चाहिए ना मारने के लिए। तो फिर जब क्रोध आया उसका, हाँ कहा भीमसेन का शरीर बड़ा ऐसा, और देखा एकदम वो भी गर्जना कर रहा था, तो दुर्योधन का हालत खराब, आदमी नहीं है राक्षस है ये राक्षस। अगर आप किसी को मान लो कोई मार रहा है किसी को, यहां तो आजकल बम से उड़ा के छोड़ के चले जाते हैं, मान लो मार दिया, मार के उसका पेट फाड़ दिया, अब पेट में पहले तो पेट हटाना पड़ेगा ना, अतड़ियां तो नीचे होती हैं सर, उसकी अतड़ियां निकाल कर कोई गले में ढाल ले, वो सीन आप देख लो तो क्या होगा, इसको इमेजिन करना, इमेजिन इसको विजुअलाइज करना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं भागवतम, वो कैसे आपके सामने कोई ऐसा करेगा क्या सिचुएशन होगा? इसीलिए लक्ष्मी जी डर गई ना, देवता तो डरे डरे लक्ष्मी जी भी डर गई, ये मेरा पति, ये मेरा पति है, देखा नहीं कभी मैंने ऐसा, वो जा नहीं रही है। तो ऐसा नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और इतना क्रोध था नरसिंह भगवान को, इतना क्रोध था कि जब पूरे नाखून से फाड़ दिए उसके शरीर को, तो ढूंढ रहे हैं किधर गया हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप है नहीं, ढूंढ रहे और जोर से गुर्रा रहे किधर है किधर है किधर है, कहीं नहीं मिल रहा। क्रोध में होता है ना आदमी, आदमी क्रोध में होता है, तो भगवान क्रोध में है तो सोचो क्या करेंगे, कहीं नहीं मिला हिरण्यकश्यप, भाग गया क्या? तब भगवान ने ऐसे ही की ऐसा करके हाथ को झाड़ दिया, भगवान ने अपने दोनों हाथों, बाकी भुजाओं का तो प्रयोग नहीं किया, दो हाथों को ऐसे झाड़ दिया, और भगवान के नाखूनों में से हिरण्यकश्यप का शरीर के टुकड़े टुकड़े निकले। कैसे उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा हमको पता नहीं, इतने टुकड़े करें। तो आप सोच सकते हैं हिरण्यकश्यप का साइज क्या था, भगवान का साइज क्या था। तो ये है उग्र नरसिंह, कहीं पे उग्र नरसिंह का विग्रह थोड़ा सा अपराध तो जल जाता है, गांव का गांव जल जाता है पूरा। अब जाएंगे आंध्र प्रदेश में तो ज्यादा से ज्यादा नरसिंह देव ही है वहां पे, मंदिर सबसे ज्यादा नरसिंह देव के आंध्र प्रदेश में, सिम्हाचलम और मंगलगिरी, यादगिरी गुट्टा, आहोबिलम, ये तो फेमस है जो मुझे याद है, बहुत मंदिर है। उग्र गांव के गांव जले हैं, हमारे नरसिंह देव उग्र नरसिंह जो मायापुर में ला रहे थे विग्रह बना के साउथ से, तो एक गांव में रखे हुए थे जहाँ पे बने थे, हम वो बोला बाद में ले जाऊँ, हम बोले थोड़ा बाद में आके ले जाएंगे, हमको तो ऐसे भी नरसिंह चतुर्दशी के लिए चाहिए, थोड़ा बाद में ले जाएंगे। और दो दिन बाद फोन आ गया, बोला लेके जाओ इधर सब जल जाएगा। हाँ एक फिर ट्रक में लेके आ रहे थे, ट्रक में भगवान को लेके आ रहे थे, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं है, भगवान आ गए देखो, हाँ अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। वो तो क्या है ना, औदार्य धाम है मायापुर, इसलिए नरसिंह देव वहां पे औदार्य रूप में है, नहीं तो कहीं पे भी आप नरसिंह भगवान के टेम्पल उग्र नरसिंह जहां अपराध हुआ कीर्तन के लिए भेजे, जहां अपराध हुआ सबसे पहला जला देते हैं, गांव के गांव जले हैं। उग्र रूप में शांत नहीं कर सकते आप उनको इतना आसानी से, इसीलिए फायर अभिषेक होगा आज, बाद में देख लीजिएगा मायापुर का भी हो रहा होगा, और बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, फायर अभिषेक अग्नि से अभिषेक करते हैं, गरम खोलता हुआ, ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं कि अग्नि डालते हैं, अग्नि अभिषेक मतलब वो मंत्र से थोड़ा देर अग्नि डाल देगी, खोलता हुआ तेल डालेंगे, लेकिन ये भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए भगवान नरसिंह देव का जो है वो बहुत थोड़ा भी अपराध खत्म कर देते हैं और थोड़ा भी शरणागति शुद्ध कर देते हैं हृदय को। इसलिए भगवान नरसिंह देव से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, छह अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हृदय में प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए, इसको फाड़ दीजिए और खत्म कर दीजिए। मत जैसे हिरण्यकश्यपु आपने खत्म किया, मेरे हृदय में भी हाँ प्रभु हिरण्यकश्यपु से बड़ा असुर बैठा हुआ है। तो ये भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में पांचवें स्कंद में, ये अध्याय है जम्बूद्वीप के वासियों की प्रार्थना। ये प्रार्थना याद रखना चाहिए, बहुत सुंदर है भगवान नरसिंह देव के लिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे अविर अविर भव, वज्र नख वज्र दंश्र, कर्मा सयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। कहते हैं ओम नमो भगवते नरसिंहाय, कि मैं भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करता हूं। नमस तेजसे तेजसे, उनका तेज तेज, देखो दो दो बार शब्द आए, उनका तेज तेजसे तेजसे, अविर अविर भाव अविर अविर भव। कहते हैं कि आप मेरे सामने प्रकट होइए पूर्ण रूप से। वज्र नख वज्र दमस्त्र, आपका नाखून कैसा है? वज्र के समान। और दमस्त्र मतलब दांत कैसे हैं? वज्र के समान। फिर कहते हैं कर्म आसायन कर्म आशयान, ये जो मेरे हृदय में जो आशाएं है ना, आसुरी इच्छाएं, इसको खत्म कीजिए। रंधय रंधय, प्लीज इसको खत्म करो खत्म करो। तमा, इसको निकाल दो। तमा जो है ये भौतिक संसार का तमोगुण। और भैया कहते हैं ग्रस ग्रस, तमा ग्रस ग्रस मतलब ये तमोगुण को मेरे हृदय से निकाल दीजिए। हाँ, अभयम अभयम आत्मनि, और मुझे अभय प्रदान कीजिए। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है, तो भक्तों को उसको पढ़ना चाहिए। मेरे पास कोई भी कुछ आते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं कि कई बार कुछ लोग पूछते हैं, एक आध भक्त आए पहले कि प्रभु जी बहुत अजीब व गरीब सपने, बहुत डरावने और ये वो सब दिखता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत डर जाते हैं। तो उनको मैं यही मंत्र देता हूँ कि आप इस मंत्र का उच्चारण करके सोइए, नरसिंह आरती गा के सोइए, भगवान नरसिंह देव को याद करके सोना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु समाम्य, ये भी है ये भी है। तो ये उच्चारण करके फिर हम वो भक्तों का काफ़ी इमीडिएटली वो खत्म हो गए, उनका जो स्वप्न आते थे वो खत्म हो गए। तो ऐसा भगवान यहाँ पे प्रकट हुए और फाइनली जब समय आ गया तब उनको मार दिए हिरण्यकश्यपु। नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। और फिर भगवान का यहाँ पे वर्णन है, फिर सारे देवता जयकारा लगाते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र सारे ऋषिकण सब भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे अभी भी, बहुत क्रोध है, हैवी क्रोध, शांत नहीं हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जा नहीं रहे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर ली है शांत नहीं हुए, शिव जी ने प्रार्थना कर ली शांत नहीं हुई, इंद्र ने प्रार्थना कर दी शांत नहीं हुए, ऋषियों ने प्रार्थना कर दी शांत नहीं हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं लक्ष्मी जी को आप जाइए, लक्ष्मी जी बोलती नहीं बाबा ऐसा रूप मैं नहीं जाऊंगी सामने। तो ब्रह्मा प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे कारण ही आए हैं, तुम्हारे कारण ही क्रोध हुआ है, तुम ही शांत कर सकते हो। और फिर प्रहलाद महाराज जाके बस भगवान को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही भगवान प्रहलाद महाराज को देखते हैं एकदम शांत हो जाते, शांत नरसिंह देव। और फिर प्रहलाद को अपनी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना अगले अध्याय में अगर मौका मिले तो आप लोग पढ़िए, सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया। और प्रहलाद महाराज को कहते हैं नरसिंह देव मांगो मांगो, बोले क्या मांगो प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, भक्ति की हूँ आपके साथ, बनिया थोड़ी हूँ। अरे बोले कुछ तो मांगो, मैं आया हूँ भगवान का दर्शन, अगर आप नहीं मांगोगे तो भगवान का इंसल्ट हो जाएगा ना। तो बोले मेरा पिताजी राक्षस था असुर था, आपका अपराध किया उसको, अरे वो पिताजी का छोड़ो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तरा दी और मांगो। तुमको ले चलो भगवत धाम, बोले नहीं नहीं मैं तो यहां रहूंगा, प्रचार करूंगा। हनुमान जी यहीं रहते हैं, प्रहलाद महाराज यहीं रहते हैं, लोग गए नहीं कभी, यहां रह के प्रचार करते हैं। फिर फाइनली जब नरसिंह देव बोलते हैं मांगो मांगो, तो बोलते हैं प्रभु मुझे अपने गुरु महाराज श्री नारद मुनि के संग की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नारद मुनि वही खड़े, और वो तो मिल ही रहा है ना संग, मतलब जरूरी नहीं कि नारद मुनि सब काम धंधा बंद करके बैठ जाएंगे, नहीं उनको अपना प्रचार करना है, संग मतलब मैं हमेशा उनका स्मरण कर सकूं, वो तो कर ही रहे हो, बस वही चाहिए। और फिर नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को अपने जंघा पे बैठाते हैं, और चाटते हैं, कैसे गाय अपने बछड़े को, शेर अपने बच्चे को कैसे चाटता है जीवा से, तो प्रहलाद को बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। नरसिंह देव सोचते हैं अरे जितना आनंद मुझे नहीं आ रहा है, इसको ज्यादा आनंद आ रहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मैं तो आनंद भोगने के लिए हूं, आनंद तो मैं भोगता, इसको ज्यादा, भक्तों को ज्यादा आनंद आता है, भगवान भले ही भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, लेकिन भक्त भगवान को भी कंट्रोल कर लेते हैं अपनी भक्ति से, अरे इसको ज्यादा आनंद आ रहा है। तब भगवान बोलते हैं हाँ अच्छा समझ गया, यानी मेरा माँ बाप नहीं है ना कोई, भगवान तो खंभे से प्रकट हुए, उनका कौन माँ बाप होगा, तो बोले अगले बार आऊंगा ना तो माता पिता का प्रेम प्राप्त करूंगा, उसी में आनंद है, तो इसीलिए भगवान रामचंद्र आते हैं और माता पिता का प्रेम। तो ये नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य है और बहुत सुंदर वर्णन है। तो हमें नरसिंह देव से वही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में भी हिरण्यकशिपु बैठा है, आप आइए उसे खत्म कीजिए। तो आज की इस शुभ तिथि पे हम नरसिंह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, और शाम को अभी यज्ञ, अभी 5 मिनट में यज्ञ चालू हो जाएगा, आप लाइव देख सकते हैं यज्ञ, 6 बजे अभिषेक है, भगवान का जरूर देखना चाहिए, अगर कर नहीं सकते तो कम से कम देखने मात्र से आप शुद्ध हो जाएंगे, भगवान का अभिषेक हो रहा है। ठीक है, श्री नरसिंह देव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। बंद हो गया, आपको लगाना है तो अपना चैनल में भी थोड़ी देर यज्ञ दिखा सकते हैं।